اسمك أنت الاسم من عفوك سبحان
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
كيف حالك رتلا كده امسنا ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں چند باتیں کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے اور ہم اس کے الخالق ہونے کو المالک ہونے کو محسوس کر سکیں شروع کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تھوڑا سا باہر سے ہی لوگ جو آ رہے ہوں گے نا تو آپ وہاں ان کو ویلکم کریں تاکہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 رکھی آئیے تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود قلد اللہ کہہ دیجئے کہ چاہے پکارو اللہ کو عبد الرحمن یا پکارو رحمان کو ایما کسی بھی نام سے یعنی کسی بھی طریقے سے تدعو تم اس کو پکارو مطلب یہ کہ اس کا جو بھی نام تم رکھو گے فلح الاسماء الحسنا اس کے لیے بہت سارے خوبصورت نام ہے فلا تجہر بصلاتک اپنی نماز کو زیادہ اونچی آواز سے نہ کرو یعنی زیادہ اونچی آواز سے نہ پکارو، ولا تو خافت بھی اور نہ اس سے ہلکا رکھو، وابتغی بین ذالک سبیلا اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. اس آیت میں ہم نے ایک لفظ سنا الاسماء الحسنی، ہم سب بچپن سے اس لفظ سے متعارف بھی ہیں اور ہم اپنے مالک کے نام کو اسی نام کے ساتھ اردو میں بولتے ہیں، تھوڑے سے غلط پروناؤنسیشن کے ساتھ ویسے ہم بولتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ جو کہتے ہیں اسماء حسنی یا اسماء الحسنی کہتے ہیں، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام، اللہ کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الوہاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکاریں گے آپ کا دل محبت سے بھر جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اگر علوم کو جمع کیا جائے تو علم کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی شخص کو جانے بغیر اس سے محبت کرنے لگے، کسی ہستی کو پہچانے بغیر ہم اس سے ڈرنے لگے، اس سے امید لگانے لگے. لیکن لفظ اللہ ہم سب کے لیے ایک نیا نام نہیں ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بچپن سے سنتے آئے. جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ایک کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور ایک کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار پڑی تھی. اس پکار کو اگر آپ اور میں اپنے دل پر محسوس کریں تو حقیقت میں دل کھل جاتا ہے. اگر آپ سورۃ حشر کی آخری آیتیں سنیں، میرا گمان ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو ہیں ان آیات کو رات کو پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے. میں آپ کے لیے پلے کرتی ہوں، آپ ذرا سی اس کی مٹھاس کو اور اس کی محبت کو محسوس کیجئے گا اور یہ میرے آپ کے رب کا تعارف ہوگا. آئیے سنتے ہیں.
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
کچھ محسوس کیا اپنے دل پہ پکار؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن پڑھنے کا دعویٰ کریں قرآن پاک کی، شاید ہی دو تین آیتوں کے بعد ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ سب بھی قرآن کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. لیکن اگر آج میں آپ کو ایک نئی چیز سے متعارف کرواؤں، اگر آپ نے پہلے کبھی اس علم کو نہیں لیا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا علم ہے. آپ دیکھیے کہ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، فقہی باتیں نہ ہونے کے برابر، معاشرتی مسائل تذکرہ موجود ہے، تفصیل اس کی احادیث میں موجود ہے. مختصراً یہ کہہ لیجئے کہ اگر نماز کا طریقہ اگر آپ نے دیکھنا ہونا تو آپ کو قرآن میں نہیں ملتا. شادی کیسے ہوتی ہے، ایک لڑکے لڑکی کو ایک دوسرے کے لیے حلال کیسے کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں اس کا طریقہ نہیں ہے. تذکرہ موجود ہے، اشارے موجود ہیں. پھر کاروبار کیسے کیا جائے، اے ٹو زی، 1 2 3 4 5 لسٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ جس کے ساتھ انسان اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے اس کی بھی لسٹ نہیں ہے. لیکن ایک علم ایسا ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر ایک دو آیت کے بعد تذکرہ ہے، اور وہ ہمارے پیارے مالک رب کی کے نام ہے. آغاز دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کیوں بسم اللہ؟ کیونکہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ، اللہ، الرحمن، الرحیم. پہلا کلمہ جو ایک شخص اپنی زبان سے نکالتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے वो उसमें तीन नाम है अल्लाह के, अल्लाह अर रहमान अर रहीम। आप कहते हैं हमें इससे भी पीछे कुछ बताएं, तो कुरान नहीं बताता है कि जब कुरान पढ़ने लगो तो क्या करो, फस्तईस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आप सब बचपन से अपनी उस्तानी जी से या अपने मौलवी साहब से यही सुनते आए कि बेटा जब कुरान पढ़ने बैठोगे ना तो कहना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किसी के लिए नया कलमा तो नहीं है, आऊज़ु बिल्ला लफ्ज़ अल्लाह के बग़ैर से जुमला भी मुकम्मल नहीं। चलिए कुरान पाक की सबसे खूबसूरत आयत जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं, कि जिसके लिए कहा कि जहाँ पढ़ी जाए शैतान भाग जाता है, और जो हर नमाज के बाद उस पर मदावमत कर ले तो उसके और जन्नत के बीच में मौत है। क्यों आयतुल कुर्सी अहम है? क्या उसमें नमाज का तरीका है, रोज़े का तरीका है, लिबास और हिजाब के मसाइल हैं, शादी के मसाइल हैं, रफुल जदैन करना या ना करना कोई फिकी इशू है? नहीं, अल्लाह के नाम और उसकी सिफात, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स। अल्लाह ताला के तकरीबन 7 नाम और 25 सिफात हैं। तो आयतुल कुर्सी क्यों अहम है, क्यों शैतान इसको सुनकर भाग जाता है? क्योंकि इसमें मेरे मालिक के बड़े खूबसूरत नाम हैं। चलिए आयतुल कुर्सी के बाद और कुरान पाक की कोई मारूफ आयत बोलिए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से, कह लीजिए कि एक दफ़ा पढ़ना तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर है। सुनी हुई है ना बात आपने? और एक सहाबी थे, मुआविया बिन मुआविया उनका नाम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी जगह पे इमाम बनाकर भेजा, नमाज पढ़ाते थे। कुछ अरसे के बाद नबी सल्लम जब वहाँ गए या वहाँ के कुछ लोग आपके पास आए, उन्होंने आकर एक शिकायत की कि जिस शख्स को आपने इमाम बनाया है हमें उसे गिला है, क्या हर रकत में या हर नमाज में ये कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं? अच्छा वैसे बायदा भी पढ़ते तो हम भी हैं, पर फ़र्क देखिए, हमारा तो गुमान ही ये था कि कुल हुवल्लाह ही होती है बस नमाज। यकीन करें ये बड़ी पर्सनल बात है, अच्छे खासे शऊर की उम्र में आके मुझे पता चला कि कुल हुवल्लाह के बग़ैर भी नमाज हो जाती है, और इसके अलावा भी कोई सूरत पढ़ सकते हैं। पर ना बचपन से वही एक सुनी हुई थी कि सुबहाना कल्ला उमा वबी हमदी का, इतने आराम से नहीं बल्कि तेज़ी से हम पढ़ते हैं, सुबहाना कल्ला उमा वबी हमदी का अशहदु अल्ला इलाहा, और सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु अकबर सुमे अल्लाहु लिमन हमीदा, हम ऐसे ही पढ़ते थे। हम भी पढ़ते हैं, लेकिन वो मुआविया बिन मुआविया भी पढ़ते थे। लेकिन फ़र्क क्या था, तलबी हो गई कि भाई ये आप क्या करते हैं? कहने लगे अल्लाह के नबी मैं क्या करूँ, मुझे कुल अल्लाह से मोहब्बत बढ़ी है क्योंकि इसमें मेरे रब का जिक्र है। आपने फरमाया तेरी ये मोहब्बत तुझे जन्नत तक ले जाएगी। तो कुल हु अल्लाह अहद सूरत क्यों तिहाई कुरान के बराबर है? क्योंकि उसमें कुल हु अल्लाह अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। तकरीबन आप देखिए 8 से 9 अल्लाह के नाम और सिफात हैं। क्या पता चला? सूरत फातिहा की बात कर लें, ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, जो शख्स सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती। कोई नमाज देख लीजिए, फ़र्ज़ नमाज सूरत फातिहा के बगैर होती, सुन्नत नमाज होती, नफिल नमाज होती, नमाज जनाजा होती, सलातुल इस्तस्का होती, कोई भी नमाज देख लीजिए, इस तौबा इस्तग़फ़ार की नमाज होती है, हर नमाज में सूरत अल फातिहा क्यों? गिनते हैं ज़रा, है कोई उसमें हमारी पसंद का इशू? आज हमने दीन को कितना डूज़ एंड डोंट्स का हिस्सा बना दिया, हालांकि अल्लाह के कुरान का आगाज़ डूज़ एंड डोंट से नहीं होता, वो शुरू होती है अल्लाह के नामों से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। 7 आयतें हैं, अगर आप बैठे बाद में तो मैं आपको इसमें से 15 से 20 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स निकलवा सकती हूँ। 1 साल की तफसीर में हमने इसमें से अस्मा और सिफात अलग किए थे। क्या पता चला? कुरान का जो असल इल्म है वो अल्लाह की मार्फत है। कुरान क्यों नाजिल हुआ? ताकि लोगों को बताया जाए कि कुल हुवल्लाहु अहद। अगर आप कह लीजिए कि कुरान पाक का थीम बेस एक जो एक अंदर से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, वो अल्लाह के नाम और उसके सिफात है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कल्चर में चीज़ों को पहाड़ों की तरह पढ़ा जाता है। दो दूनी चार, ते चार दूनी आठ, कैसे पढ़ते थे? आता है किसी को पहाड़ा? किसी को आता है दो का पहाड़ा? क्यों शर्मा रहे हैं? आता है आपको? पढ़े हैं ज़रा। एक दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूना बत्तीस, बत्तीस दूना छत्तीस, जो 64 हैं। हम इसी तरह से अल्लाह के नाम पढ़ते हैं, अल्लाह रहमान रहीम, अल मालिक अल कुद्दूस, अल सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर। दिल का कोई तार ही नहीं हिलता, हालांकि मालिक की मोहब्बत आ ही नहीं सकती जब तक आप और मैं उसको पहचानेंगे नहीं। देखिए, मैं चंद लफ्ज़ बोलती हूँ, कोई बेजान चीज़ों के, कुछ जानदार चीज़ों के, आप मेरे साथ रहिए। कोक, कोला कहते हैं आप लोग इधर, कुछ दिल में गुदगुदी हुई कोला के नाम पे। चॉकलेट, चुकला दे क्या बोलते हैं? मुझे भी सिखाएं, मैंने भी आपसे नौश सीखनी है। चुकला दे, कुछ होता है अंदर गुदगुदी सी होती है ना। और बोलें कोई, ज़रा कोई और पसंद की चीज़ बोले। मसला क्या है कि हमारी मिसालें सारी खाने पीने पे आती हैं। आइसक्रीम आप कहते हैं ईस, ईस कहते हैं कि मुझे आ गई है ना नौश, ईस हाँ। और बोले पिज़्ज़ा, ऑफ कोर्स उसके बगैर नहीं। और वो जो बेचारा केक है, उसको आपने क्या बना दिया? खाके। बाहर वाले हों तो वो कहेंगे पता नहीं इनकी इंग्लिश को क्या हो गया है। अभी आप देखिए, ये जो भी नाम बोले हैं ना, इनके साथ एक जहन में इमेजिनेशन में कुछ आता है ना, किसी का टेस्ट, किसी की खुशबू, किसी से फ़न का ख्याल आता है, हालांकि ये बेजान चीज़ें हैं। चलिए इसको छोड़ दें, अब मैं लफ्ज़ बोलूँगी, इस पे गौर से सोचिएगा। माँ, आप सब लफ्ज़ माँ सुनते हैं और कहें अम्मी, मेरी माँ, क्या दिल में हो रहा है? माँ के लफ्ज़ के प्यार के साथ कोई प्यार का एक चश्मा उबलता है दिल में? अब्बू, कितनों की आंखें भीग जाती हैं लफ्ज़ अब्बू से। भाई, बहन, हर रिश्ते के साथ हमारे दिल में एक अजीब जज्बा आता है, आता कि नहीं आता? मामू, फूफो, खाला, अब ये अलग बात है हमने उनसे लड़ाइयाँ ली हों तो अलग बात है, लेकिन ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों के चेहरों पे नागवारी भी देख रही हूँ। खाला ठीक थी, पुप्पो क्यों ले आए? मामू ठीक थे, ये चचा का क्या तस्करा। लेकिन याद रखिए, हम रिश्तों की डोरियों में बंधे हुए हैं। अब कुछ और मोहब्बतें, अगर आप मैरिड सिस्टर हैं तो शौहर का नाम आते ही दिल में क्या आता है? और गए भी हों काफ़ी दिन से बाहर, 15-20 दिन गुजर चुके हैं, उनको देखे हुए फिर बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे ही है ना। चलें, आप अपने वो गुप्लू मुपलू लाडू को याद करें, जो आपकी गोद में आता है तो चुप करता है, बाहर जाता है तो रोता है। हर रिश्ते, हर इंसान के साथ हमारे दिल में कुछ होता है, होता कि नहीं होता? क्योंकि हमारी हमारी निस्बतें हैं। अब सच बोलिएगा, मुझे पता आप सच बोलते हैं। अभी मैंने आपके सामने सूरत हशर की आखिरी आयतें चलाई थी, आपके दिल में कुछ हुआ क्या? अल्लाह सुबहाना ताला के नाम सुनकर दिल में गुदगुदी होती है? देखिए, अपने आप से पूछते हैं, आपने भी और मैंने भी, मैं आपसे नहीं पूछ सकती और आप भी नहीं मुझसे पूछते, क्या मुझे अल्लाह के नामों को सुनकर, एक नहीं दो नहीं, हमारे कल्चर में मारूफ है 99 नेम्स, क्या अल्लाह ताला के नाम सुनकर दिल में कुछ होता? अगर नहीं होता तो मान लीजिए ताल्लुक कमज़ोर है। जिस हस्ती से मोहब्बत ना हो उसकी बात कोई माने तो क्यों माने? हम लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं, हम अल्लाह का लफ्ज़ सुनते हैं, हम कहते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी बेतकल्लुफ़ी से एक जुमला बोल दूँ कि हमारी अल्लाह ताला से कुछ ज़्यादा जान पहचान नहीं है। हम अल्लाह ताला का मिजाज नहीं समझते, हम अल्लाह ताला की पसंद नहीं समझते, उसकी नापसंद नहीं समझते, वो किन बातों से खुश होता है, वो किन बातों से नाराज़ होता है, वो अल खालिक है तो कैसा है, और वो अल मालिक है तो कैसा है, वो कौन है और वो कैसा है, बहुत कम जानते हैं। जिसको आप कह सकते हैं कि नाम सुना भाई, हाँ जी हम आपको जानते हैं, मेरी अम्मी ने बताया था आप हैं। और हदीस का खुलासा, आज मैं आपको बहुत सख्त बात, कोई मुश्किल बात नहीं बोलना चाह रही, सिर्फ हम आज बातें ही करेंगे क्योंकि हम बातें ही करने के लिए जमा हुए हैं। हदीस में आता है कि एक शख्स जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, जब उसका हिसाब किताब होगा ना, तो लफ्ज़ अल्लाह उसकी ज़ुबान पे नहीं आएगा। और आपको यहाँ एक और भी बात बता दूँ, कब्र में जाते ही जिन जो तीन सवाल मेरे आपसे होने हैं ना, उनमें से 1/3 अल्लाह के नामों और उसकी सिफात के बारे में होने हैं। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन था? दुनिया में जो मर्जी के रब, गॉड, अल्लाह, रहमान, अगर उससे वो ताल्लुक नहीं था ना जो होना चाहिए, तो इंसान वहाँ कहेगा लादरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और कोई कहेगा जो लोग कहते थे मैं भी वही कह देता था, क्योंकि ताल्लुक नहीं होता। आप देखिए कि चीनी में चाय में चीनी डालते हैं ना, तो चीनी मीठी हो जाती है। मीठी चाय और फीकी चाय में फ़र्क होता है। इसी तरह ताल्लुकात के अंदर अगर एक चाशनी और एक मोहब्बत हो ना, तो ये फ़र्क होती है। मुझे आपको अपने मालिक के साथ कितना प्यार है, अपने आप को अकेले में बैठ के पूछें और चांद के नीचे बैठ के पूछें, कायनात में घूमें फिरें, गौर करें और देखें और फिर पूछें, अल्लाह तू कौन है, तू किधर है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बड़ा प्यार था और अल्लाह ने उनसे कलाम भी किया, लाडले पैगंबर थे। एक रिवायत में आता है कि एक दिन अल्लाह ताला से कहते हैं, ए अल्लाह, या रब्बी, अंत फिस समाई, तू आसमान में है, मैं नीचे हूँ, नाहनु फिल अर्द, तू ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मुझे कैसे पता चले कि तू किस बात से खुश होता है, किस से नाराज़ होता है? अब अगली बात नहीं बताती क्या जवाब आया था, लेकिन सवाल अपने आप से भी करती हूँ और आपसे भी, क्या हमारे जहनों में भी ये सवाल आता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नाराज़ है? देखिए ना, जिससे भी प्यार हो, हम क्या चाहते हैं वो भी हमसे प्यार करें। और एक मामले में औरतों की याददाश्त, मेमोरी बहुत वीक है, और वो क्या है, कोई बताएगा आप में से? डू यू लव मी? वो कहेगा 1500 बार कह चुका हूँ हाँ। नहीं, लेकिन वो आज नहीं पूछा ना, मैं भूल जाती हूँ बार बार। कहते हैं बीवी की जिस मामले में याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, वो ये कि क्या वाकई उसका हस्बैंड उसको प्यार करता है कि नहीं। फिक्र होती है, क्या ये मुझसे प्यार करते हैं? स्टिल यू लव मी? हैं, बच्चों को क्या कहते हैं? आई लव यू। यानी हम खून के रिश्ते हों, सहर के रिश्ते हों, नसब के हों, हम बार बार तजदीद चाहते हैं आई लव यू की। कब आखिरी बार अल्लाह से ये पूछा? देखिए, मैं ये नहीं कह रही आपको अल्लाह से प्यार है, कि मैं ये नहीं कह रही, ये तो एक आम बात है। कभी उससे पूछा कि आपको मुझसे प्यार है? अल्लाह ताला, मैं आपकी नज़रों में कैसी हूँ? अल्लाह ताला, मेरा क्या मुकाम है आपकी निगाहों में? अगर ये सवाल जवाब और ये खुद कलामियाँ नहीं हुई ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें असमौल हुस्ना सीखने की ज़रूरत है, इस पे गौर व फिक्र की ज़रूरत है, तदब्बुर की ज़रूरत है। क्यों? कि हम अगर उसको गॉड कह दें, फिर बिगड़ते बिगड़ते उसको गौश कर दें, और फिर उसको भी निकाल दें अपनी खातों में से, और आज तो वो वक्त आ गया। लोग कहते हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड, एक सेइंग है अमेरिका में बड़ी, इन गॉड वी ट्रस्ट, सुनी होगी शायद, इधर भी होती होगी, बहुत मारूफ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ गॉड को चेंज किया। जब हम खुद पढ़ते थे, मुझे अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ याद है, बड़ी जी से लिखें तो अल्लाह, और छोटी जी से गॉड लिखें तो बुत, ऐसी था ना, देवियाँ। पहले दौर में, आज से 20-25 साल पहले, लोग अल्लाह के लफ्ज़ को बड़ी जी से लिखते थे, साफ पता लगता था ये ऊपर वाला है, बाकी सब नीचे वाले हैं, गॉडेसेस या गॉड वट एवर। आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ गॉड गोश में बदल गया, और आज जिस जगह मैं और आप बहुत कसरत से रहते हैं, वहाँ अक्सरियत कहती है वी डोंट बिलीव इन गॉड। आपको भी पता है आज के दौर का फैशन है, वी डोंट बिलीव इन गॉड, देर इज़ नो गॉड। भाई क्यों, तुम्हें ये सारी दुनिया कैसे चलती हुई दिख रही है? कहते नहीं, इस मदर नेचर, इट्स जस्ट कोइंसिडेंसेस, इट्स सीरीज ऑफ चेंजेस। चले ठीक है, आप इस जहाज़ के पायलट को बाहर पीछे बुला लें और ख़ुद चलने दें जहाज़ को, कितनी देर चलता है। यानी अल्लाह की पहचान को दिलों दिमागों से ऐसे निकालने की कोशिश की गई है कि आज अल्लाह की पनाह छोटे छोटे मासूम जहनों में पैगाम मिलते हैं। एक बहुत मारूफ पोइम थी, अगर आपको भी अपने बचपन के नाते से याद आएगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप सब यही सुन के बड़े हुए होंगे। जब उसको बैक ट्रैक करके किसी म्यूजिशियन ने सुनाया, मैंने खुद सुना, हम उस महफिल में थे, तो उसमें से आवाज़ें क्या आ रही थी, सैटेनिक वर्सेस थी, यानी शैतान की जो उसके अंदर हिडन वॉइसेस है, देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड। और वो एक ब्रदर थे, पहले म्यूजिशियन थे, फिर आहिस्ता अल्लाह ने, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उनका रास्ता बदला, उन्होंने म्यूज़िक का को छोड़ा और किसी दूसरी तरफ चल पड़े। तो हम एक जगह पढ़ते थे तो उधर उनको इन्वाइट किया गया था, कनाडा में रहते हैं वो ब्रदर, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे। तो उन्होंने स्क्रीन पे ये सारी बैक ट्रैक करके हमें खुद भी आवाज़ें सुनाई थी, मेरे पास रिकॉर्डेड भी कहीं पड़ी होंगी पुरानी किसी रिकॉर्डिंग में। तो उन्होंने बताया था कि जो पोइम्स हैं और जो एडवर्टाइजमेंट है, आजकल की तो हर बात ही छोड़ दें, अब तो ये बातें खुल के आ गई हैं, पहले तो ढकी छुपी थी। तो उनके अंदर बैक ट्रैक में मैसेजेस हिडनली बच्चों को, बड़ों को क्या दिए जाते हैं कि गॉड नहीं है, किल मी किल मी किल मी, एक सॉन्ग है अमेरिका में बहुत मशहूर, तो उसको बैक ट्रैक करके सुनाया तो उसमें बात आ रही थी किल मी किल मी। और कहते थे कि वो गाना सुनने जो सुनता है तो वो बच्चों में तशद्दुद आ जाता है, फिर जब रिसर्च की तो उसके अंदर हिडनली मैसेज जो था कुछ इस किस्म का था। ये सारी बात क्यों कर रही हूँ? आप मैं जितना मर्जी ऐसे माशरे में चले जाएं कि जहाँ लोग अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत हमारी फितरत की पुकार है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। जैसे भूख लगती है तो मैदा खाना मांगता है ना, और प्यास लगती है तो पानी मांगता है, जब थक जाए तो आंखें नींद मांगती हैं, कमर थक जाती है तो बिस्तर चाहिए होता है। इसी तरह मेरे आपके दिल की पुकार क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। आज इंसानियत इतना भटकी, उसने सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस करना है, यहाँ शायद लग्जूरियस कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग लग्जरी को, लग्जूरियस बोले आप, सादिया बोले, लुक्सस लुक्सस ऐसे ही है ना। वो एक ब्रदर थे तो वो सुना रखा, तो यहाँ की जेलें बड़ी लुक्सस हैं, तो हमने कहा आपने इसका लगता है देखी हुई है, बड़े जोश से वो लुक्सस बोल रहे थे। आप देखिए लग्जरियस लाइफ लेकर भी क्या लोग खुश हैं, आपने भी सुना होगा इस साल दोबारा नॉर्वे जो है वो नंबर वन पे आया है जिंदगी का लाइफ स्टाइल के हिसाब से। ये मैं उस दिन स्विट्ज़रलैंड में थी तो जब मुझे बताया, गलत भी हो सकती है रिपोर्ट, लेकिन वहाँ के साथियों ने बताया कि स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे का आपस में चलता रहता है, किसी साल ये नंबर वन पे आता है तो वो आता है, पिछले साल ये 4 नंबर पे था अब ऐसे हो गया। लेकिन अभी लास्ट 2 वीक पहले मेरे हस्बैंड के थ्रू जो बात मेरे तक पहुंची, एक ब्रदर है उन जानते हैं उनको, तो उनका काम क्या है कि जो इमरजेंसी कॉल्स रिसीव करते हैं हॉस्पिटल में, जो एम्बुलेंस कॉल करती है ना कॉल्स, तो वो ब्रदर वो काम करते हैं और मोस्टली उनकी नाइट ड्यूटीज होती हैं। उन्होंने बताया, और आप में से एक डॉक्टर है, इनको तो मैं जानती हूँ, आप में से कोई और भी डॉक्टर हैं इनके सिवा, आप कभी नाम भूल गई, आप कभी भूल गई, काफ़ी है ना, आप जाकर रिसर्च कर ले। जो मुझे बात पता चली उस ब्रदर ने मेरे हस्बैंड को बताई, और उन्होंने कहा कि एवरी डे ओस्लो शहर में 1 कॉल वो रिसीव करते हैं, या पूरे ओस्लो के फिगर्स में एक सुसाइड की अटेम्प्ट, यानी एवरी डे ओस्लो में एक बंदा खुदकुशी की कोशिश करता है। और फिर उन्होंने ये बात बताई कि फिगर्स एंड फैक्ट्स कहते हैं कि नॉर्वे पूरे में एवरी डे 2 लोग खुदकुशी की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने सवाल सुन ये बात सुनते, मैंने कहा भाई किसी का मरने को दिल करता है? सच बताएं इधर क्या कमी है जिस पे बंदा मरे, ना बिजली जाती है, ना गैस का कोई प्रॉब्लम है। खूबसूरती देखिए, सफाई देखिए, लाइफस्टाइल देखिए, ज़िंदगी की हर बेसिक चीज़ मौजूद है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जिसके लिए अल्लाह ने आपको मुझे पैदा किया। आपका मेरा जिस्म जो आप पर मैं इस वक्त देख रहे हैं, हम जिस मट्टी से निकली हुई चीज़ें खा के पले बढ़े, हमारा वजूद ही इससे बना, मैं नुतफ़तन, अल्लाह ने कैसे इन इन बच्चे की तख्लीक की, फिर उसके बाद हम मादी चीज़ें खाते हैं, गोश्त रोटी जो कुछ भी हम खाते हैं सभी जानते हैं, किसी ना किसी तरह से उसका ताल्लुक़ ज़मीन से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खा खा के फिर बड़े होते हैं, फिर और खाते हैं ताकि पतले हों। और हम पाकिस्तानी लोगों के बारे में मरूफ है कि खाना हज़म करने के लिए भी कुछ खाते ही हैं, और ख़ास तौर पर 7 अप पीते हैं। वो कहता है 7 अप पियो, कहता अगर इसकी जगह होती तो मैं और 2 बोटियाँ ना खा लेता, ऐसे ही है ना। लेकिन ये जो जिस्म का वजूद है ना, ये जिस्म से बना है, तो याद रखिए कि हमारे वजूद के 2 हिस्से हैं, एक ये जो आप मेरा और मैं आपका देख रहे हैं, ये आउटर लेयर है, ये सिर्फ एक वनीर है, एक कोटिंग है, लेकिन हमारे वजूद का एक अंदर का हिस्सा है जिसको आप रूह कहते हैं। मैं उसको इससे समझाती हूँ अक्सर। ये देखिए, ये मेरे हाथ में माइक है, आपको भी आवाज़ आ रही है। अब ये कैसा है, ऊपर से गोल है, इसके अंदर ये डंडी है, फिर इसकी तार वो स्पीकर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसकी जाहिर है। आप कहते हैं कि शायद इसकी ये शेप बड़ी अहम है। अब देखिए, मेरी आवाज़ पीछे नहीं अब जा रही होगी, क्या हुआ, मैंने ये बटन दबा दिया। इसकी इसकी ज़िंदगी किस चीज़ से है, उस इलेक्ट्रिक करंट से जो पीछे से आ रहा है। ये शेप ऐसी हो, ये देखिए, ये ऐसा है, स्कूल में हमारे टेबल पे जो रखा हुआ वो बिल्कुल ही गोल मटोल सा है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाइट ना होता, ग्रे होता, तो क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंचने में कोई फ़र्क पड़ता इससे? नहीं पड़ता ना। बस ये समझिए, ये जो ज़ाहरी फिजीक है ना आपकी मेरी, ये हम ज़ाहिर में एक ऊपर कवर दिया हुआ है ज़रूरत के तहत, लेकिन असल में जो हमारा वजूद है ना वो इसके अंदर की करंट है। समझ लेते हैं, चले, दो चीज़ों से मिलकर इंसान बना है, एक बदन और एक रूह। बदन बॉडी, जिसको आप मरने के बाद बॉडी कहते हैं, लाश को, ज़िंदगी में बॉडी दूसरी को कहते हैं। लेकिन ये जो ज़ाहरी ढांचा है ना, ये असल नहीं है। असल चीज़ क्या है, जो हमारे अंदर रूह है। व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया था पहले और अंदर से खोखला था। रिवायत में आता है, आप पढ़ लीजिए, अलविदा नहाया बुक है, बेसिक पूरी बिगिनिंग से जो दुनिया के फिगर एंड फैक्ट्स मिलते हैं वो इसमें कुछ ऑथेंटिक है, अल्लामा इब्ने कसीर की ये बुक है। तो मैंने उसके नाते से काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, जब मुझे बहुत शौक़ आया कि दुनिया शुरू कैसे हुई, तो उसकी ही बहुत सारी बातें मुझे अभी भी याद आ जाती हैं बताते हुए। तो कहते हैं कि उसमें लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम का खमीर गूंदा, मिट्टी खोई, जैसे पहले सूखी थी तुराब, फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर वो थोड़ी लेसदार हो गई, होते होते बिल्कुल वो ऐसी हो गई कि उसको शेप दे दो, तो शेप दे के छोड़ दिया सूखने के लिए। जब वो मिट्टी का पुतला बना हुआ था ना सूखा हुआ, तो शैतान आया, तो वो अंदर बाहर घूम रहा है, फिर रहा है, इधर देख उधर देख। उस दिन उसको पता चल गया इंसान अंदर से खाली है। जब आदम का पुतला तैयार हो गया, पुतला समझ लें डमी, उसकी फिजिकल शेप, फिर अल्लाह ने उनमें अपनी तरफ से रूह फूकी थी। वो कैसे फूकी थी मैं आप नहीं जानते, गैब का मामला है। लेकिन ये जो मेरी आपकी सांस की डोरी चल रही है, और आप में से जो डॉक्टर्स हैं जब कहते होंगे जी और पेशेंट इज़ एक्सपायर्ड नाउ, वो क्या होता है, वो अंदर से वायर चली जाती है। असल चीज़ वो है, ये जिसम एक रैपिंग पेपर है। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझें कि आपको एक बड़ा खूबसूरत गिफ्ट रैप मिलता है, आप उसकी पैकिंग में खो जाते हैं, बड़ा प्यारा है, कवर भी बड़ा अच्छा है, मैं तो इसको खोलूँगी नहीं, मैं तो इसको मतलब आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उसी पे खोते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सब्र नहीं होता ना, फिर कहते हैं खोलते हैं, देखते हैं कि बड़े प्यार से खोलेंगे, एक खोलेंगे दूसरी, और जब आखिर में उसमें से डिबिया में से एक छोटी बड़ी खूबसूरत सी रिंग निकलती है, फिर क्या होता है, वो रिंग आपकी उंगली में जाती है, और फिर वो थोड़ी देर बाद डब्बी भी इधर उधर, और वो पेपर का क्या नसीब है जो रैपिंग पेपर है। शायद कुछ लिखा चार सिस्टर हों तो कुछ देर रख लें कि शायद रीयूज़ कर लें, नहीं तो कुछ सफाइयाँ करने के बाद वो ट्रैश होगा। बस ये है असल बात, अल्लाह ने मुझे आपको पैदा किया, असल मोती रूह का था, इसको रैपिंग पेपर दिया अल्लाह ने आपका मेरा, किसी को ब्राउन, किसी को वाइट, किसी को स्किन पे पिंपल कर दिए, किसी के दाने बन गए, किसी को पतला कर दिया मोटा, ये हम सब जो है ना ये रैपिंग पेपर में लिपटे हुए हैं। मौत की सूरत में क्या होता है, या अय्या तुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जीला रब्बी की रादियतम मर्दिया, ए नफ्से मुतमईना निकल चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि वो तुझसे राजी तो उससे राजी। मौत की सूरत में अल्लाह बंदे मोमिन की रूह को उठाता है और ऊपर ले जाता है और इल्लीयीन में जाके रख देता है। फिर जो पीछे क्या रह गया, ये रैपिंग पेपर है, फिर हम इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन डाल के कब्र में बड़ी इज्जत से डंप कर आते हैं। सोचिए उस शख्स की क्या नसीब है कि वो रैपिंग पेपर में खो जाए और वो जो अंदर का मोती था उसकी कदर ना करें। क्या बहुत सारे लोग दुनिया में सिर्फ ज़ाहरी तकाज़ों में नहीं खो गए, ईट ड्रिंक बी मैरी, और वो कहते ना कि ये करो और फिर रिपीट अगले दिन फिर वही करो। जो असल रूह थी ना उसको क्या चाहिए, अब इसको समझें। चूँकि मिट्टी से जिस्म बना, तुम्हारा दिल मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत लगता है, मादा ही है ना। आप देखिए डायमंड, आप डायमंड कह लें, है तो पत्थर, कोयले और डायमंड में एक वक्त आता है कोई फ़र्क नहीं होता, वो तो उसको तराश तराश के सफ़ेद करते हैं, वरना वो भी काला होता है। चलिए आप कहते हैं फर्नीचर, लेकिन लकड़ी है, एक इंसान जो जिसको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े मकसद से पैदा किया ना, वो कभी इन मादी चीज़ों से खुश नहीं हो सकता, वरना लोग इन मुल्कों में खुदकुशी ना करते जहाँ हर चीज़ अपग्रेडेड है। रूह ऊपर से आई है, और ऊपर से जब आई तो इसका फूड भी ऊपर से ही आता है। जैसे आप यहाँ से पाकिस्तान जाएं तो सकता है यहाँ से फूड बच्चों का ले जाते होंगे, क्योंकि इनको वहाँ का अच्छा नहीं लगता, है ना। जहाँ का बंदा होता है ना, उसको वहाँ का खाना अच्छा लगता है। इसीलिए आप देखें कि माशाल्लाह 20, 25, 30 सालों में हमने यहाँ सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपने देसी खाने नहीं छोड़े। और जब मैंने पहली दफ़ा नॉर्वे में जलेबियाँ देखी थी, तो मेरी हैरत से अकल गुम हो गई थी कि ये यहाँ भी आ गई। और जितनी मैंने जलेबियाँ और ज़रदा और दो चार और चीज़ें भी हैं, नाम ना आपका दिल ख़राब करो, जितना ये पिछले 5 सालों में मैंने नॉर्वे में खाई है, मैंने पिछली पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं खाई होंगी ना कहीं और। लेकिन हमें अच्छा लगता है। जो खुशी हमें देसी खाने को देखकर होती है, हम कभी इटालियन खा सकते हैं, हम एक दिन चाइनीज़ खा लेंगे, हम एक दिन बड़े शौक से पिज़्ज़ा बना लेंगे या बर्गर बना लेंगे, लेकिन हमें मज़ा आता अपने देसी सालन से, क्योंकि हम शुरू से उससे रेस्ड हुए हैं। अब समझिए कि जो रूह है ना, वो आसमान से आई थी। जब आसमान से रूह आई ना, तो इसका खाना भी ऊपर से ही आया। और वो क्या है, इन्ना अंज़लनाहू फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतिल क़द्र। क्या इस रूह की ग़िज़ा कुरान है। इस रूह का दिल करता है कि अल्लाह को राज़ी करे। इस रूह की फितरत में ये लिखा है कि अगर इससे गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा करे। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना, बात लंबी हो जाएगी, वापस आ जाते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला हमें अपना तारुफ कराता है। मैं कुरान क्यों पढ़ूं, ताकि मैं अपने रब को जानूं। आज हमारी कमी कमजोरी की वजह हमारा अपने अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है। देखिए, आप जिस हस्ती को जानते ही नहीं, आप उसे डरें कैसे? आप जिसकी कुदरत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप उसके आगे झुकें क्यों? जिससे आपको प्यार ही नहीं, आप उसकी बात माने क्यों? और जिसके साथ दिल ना जुड़ा हो बंदा, उसके साथ वक्त गुजारे क्यों? आज मसला क्या है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है। और अगर सिर्फ आप इस कायनात पे कुछ चटती सी निगाह डाल लें, वो चटती में एक जस्ट सरसरी एक टेम्परेरीली जस्ट आप एक छोटी सी लुक डालें ना, तो आप कहेंगे कि अमेज्ड बाय अहसनुल खालिकीन। मैंने तो जहाँ भी जाकर देखा है, मैं हैरान हुई हूँ। जंगलों में भी जाके देख लिया, पहाड़ों पे भी देख लिया, और जहाज़ में बैठ के नीचे भी देख लिया, और सहराओं में भी देख लिया। मैं तो हर जगह जाके तो अंदर से मैं हैरान हूँ कि अल्लाह, आपने ये दुनिया बनाई कैसे? आपको ये आइडिया कैसे आ गया? कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह आप सेट करें, आप वन बाय वन जो भी चीज़ दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हम दिन रात देखते हैं, लेकिन हम उस नज़र से नहीं देखते कि जो हमें अल्लाह का कुर्ब दे दे। ये जो दिन रात जुमले बोलते हैं ना, मैंने किया, मी माई आई एम, ये जो आई एम का लफ्ज़ है ना, इसी ने हमें परेशान किया हुआ है। ये हमें अल्लाह की ज़ात से दूर कर देता है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मैंने पकाया, मैंने बनाया, मेरी गाड़ी, ये लफ्ज़ मेरी निकलता है ना, फिर अल्लाह की बातें समझ आती हैं। तो आपके पास जो जो रेडी है दिखाते जाइए, एक एक करके दिखाते हैं कि कायनात पे गौर व फिक्र करके देखें, परिंदे देख लें, पहाड़ देख लें, जानवर देख लीजिए, आप हैरान होंगे। दुनिया की चीज़ एक बार आप देख लें, दूसरी बार दिल नहीं करता। बहुत किसी मेहमान को ले जाएं, चले भी जाएं, बोर होते हैं। कायनात में आप हर साल ये रंग देखते हैं पत्तों के बदलते हुए, कभी दिल भरा? नहीं भरता। क्यों नेचर के करीब जाकर इंसान को खुशी महसूस होती है? इसलिए कि मेड बाय अल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो प्लान है वो ये है। अगर तो सिस्टर नादिया आप बताना चाहें, जो मेरे दिल में वो बताती हूँ कि आज हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, और उसके बाद यह है कि अल्लाह ने आपके लिए एक मौका बनाया है, तो हम लोग हर वीक इसी तरह यहाँ बैठकर अल्लाह ताला के कुछ नामों पे गौर करें। यानी हम एक शॉर्ट कोर्स आपको ऑफ़र कर सकते हैं, जिसका खुलासा क्या होगा एंड पे बताते हैं। आप जब रेडी हो मुझे बता दें, मैं खामोश हो जाऊँगी। कुछ चीज़ें पहले देख लें, और फिर इन चीज़ों को देखते वक्त आपने बिल्कुल अपने और अपने रब के बारे में सोचना है। आप ऐसे देखें जैसे आज आप पहली दफ़ा दुनिया में किसी गार से निकल के आई, और आपने ये नहीं देखा हुआ, और वाकई भी हमने नहीं देखा हुआ, बहुत कम देखा है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम तो बाहर भी गुजरते हैं तो फ़ोन कर रहे होते हैं, उस वक्त परेशान ही होते हैं, बच्चों को फ़ोन पे भी डांट ही रहे होते हैं, ना पौधे दरख्त फल फूल हमारी तवज्जो लेते हैं, ना आसमान पे तैरते हुए बादल दिखते हैं। और अब हमारा आज के दौर का इल्मी है, इट्स सैड पॉइंट कि हमें नेचर भी देखनी होती तो स्क्रीन पे ही देखनी होती है, कंप्यूटर से जाके देख लेंगे. क्यों? क्योंकि हम सारा वक्त मादी चीज़ों में रहते हैं. तो इंशाल्लाह ताला करेंगे क्या कि हम यहाँ हर वीक मिला करेंगे और उसमें आपके साथ अल्लाह ताला के कुछ नाम शेयर करूँगी और उस पर गौर व फिक्र से ही तो अंदाज़ा होगा कि हमारा मालिक है कौन, और इंशाल्लाह फिर उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे. किसको ये आइडिया अच्छा लग रहा है? और अगर इसकी बजाय आप कहते हैं तो हम कोई फिकी इशू शुरू कर लेते हैं, नमाज का तरीका, उसमें फ़र्क, औरत और मर्द की नमाज का फ़र्क, कपड़े कैसे पहनने चाहिए और म्यूज़िक सुनना चाहिए कि नहीं, और नेल पॉलिश से नमाज होती नहीं, चाहें तो ये मसले भी शुरू कर देते हैं क्योंकि आज हमने दीन की तरतीब बदल दी. अल्लाह को जाना ही नहीं और उसके नाम पर लोगों को हुक्म सुना रहे होते हैं. कोई आइडिया दें टाइम. ये दिन ठीक है सबके लिए? एवरी थर्सडे, क्योंकि देखें काफ़ी चीज़ों को हमने प्लान करना है और एक एक मिनट कीमती होता है. आप सब सिस्टर्स के लिए जब इस हॉल में, जैसे अभी आप बैठ गए हैं, जिस वक्त पे इस वक्त मतलब आप इस पोजीशन में बैठने को तैयार हैं, वो टाइम हम रखेंगे ताकि ये ना हो कि कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, आप सोचें कि जहाज़ के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर आप भाग के भी आएँ तो वो आप नहीं जा सकते. ऐसा टाइम जिसमें आप सब अपनी मसरूफियात से फारिग होके आ जाएं और इंशाल्लाह ताला हम फिर उसमें बहुत सिंपल रखेंगे. चलिए ये देखिए, ये आगे रख लो उसके. आप देखिए इस परिंदे को, ये है खालिक. अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये परिंदा ज़्यादा खूबसूरत है कि आप, आप देखिए कि ये परिंदा आप में से कभी किसी ने देखा रियल लाइफ में? नहीं देखा ना हमने, और उसको बिल्कुल नहीं पता कि मैं कितना खूबसूरत हूँ. ये किसका नमूना है? ये किसका शाहकार है? अल्लाह सुबहान तआला का है. इसको देखिएगा, इसमें तो गौर व फिक्र करें. मैं खामोश रहती हूँ, आप लोग देखिए. आपने कभी इतने कलर्स की कौन देखी है? अब इसको देखकर सोचें कि अल्लाह कैसा होगा. आप देखिए ये काले रंग की है, लेकिन यकीनन खाने वाली होगी तभी इसको लोग खाते हैं. अब ये जो परिंदे इसमें हैं, जो बर्ड्स हैं, इनकी खूबसूरती देखें. और ये किसके लिए है? खलक लकुम मा फिल अर्दी जमिया. इसमें भी कुछ चीज़ें देखिएगा. Thank you. आप इन बर्ड्स के कलर्स देखें जरा। इसको अल्लाह की नज़र से देखें कि उसने कितने प्यार से बनाया। वाकई अल्लाह के नबी ने सही कहा ना कि इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन आपको होता है कि आप और हम सब इन परिंदों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने जिसके लिए ये सब कुछ पैदा किए वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जिसको पैदा किया। कुछ शेयर करें आप लोग। नदिया आप इधर है ना,
अभी आप जो नाम याद आ गया।
अब आ गया और आप आती रहेंगी तो आता रहेगा। इसको बाद में देखते हैं जी, शेयर करें ऐसी कुछ शेयरिंग करें।
अस्सलामुअलैकुम, इन लोगों का है ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह से स्टार्ट करते हैं तो उसी से करते हैं।
हम लोगों का क्या मतलब है
वो कुरान का तारीफ। असल में ये स्टार सारा इस तरह हुआ कि रमज़ान में जब हम लोगों ने अटेंड की ये दौरा कुरान वगैरह अटेंड किया तो इस साल ही अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम लोगों ने दोबारा अटेंड किया। तो वो होता है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला आपके दिल में खुद ही से डालना शुरू कर देता है। तो इसी तरह बस जेब में मेरे ख्याल आया कि चलो इतना बड़ा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैंने साथियों से बात की कि मेरा अजय मैं इस तरह सोच रही हूँ कि अपने घर पे थोड़ा सा ना कि मैं कर लूँ कि ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन जो मेरी मतलब नंद वगैरह बहनें और दोस्त वगैरह हैं कि हम लोग मिल के हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा बीच में रख लेंगे जिसमें हम लोग कोई मतलब कि कुरान पाक की तफसीर या कोई ऐसी चीज़ भी स्टार्ट कर ले, ताकि फिर ये कि हम लोग का एक दीन के साथ जो ताल्लुक है वो जुड़ा रहे। और ये कि ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा प्लान करके चीज़ की जाए तो वो बहुत मुश्किल होती हैं। और मैंने कहा एक स्टार्ट करेंगे, ये भी पक्का भी पता नहीं था कि स्टार्ट क्या करेंगे, लेकिन ये था कि कुरान पाक से रिलेटेड कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं। और उसमें फिर ये कि वीकली मेरे घर पे जितने भी लोग आ सकते होंगे, एटलीस्ट मेरी जो रिलेटिव या क्लोज फैमिली वाले बनते हैं तो उनसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इनसे मैंने मशवरा किया, ये पेरिस से वापस आई तो मैंने कहा कि मेरे घर का एक दिन का प्लान रखते हैं, उसमें ये कि आप मेरे घर आएँ, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और उसमें फिर देखते हैं कि हमने क्या चीज़ करनी है। मेरा ये था कि बेसिकली कुरान पाक की कोई तफसीर की किताब या कोई इस तरह की चीज़ हो कि समझ नहीं कि कुरान पाक वही कि पढ़ते तो हम सब हैं लेकिन उसके अंदर है क्या, हमें उसके बारे में पता नहीं है इस तरह से। तो एटलीस्ट जिस चीज़ का हमें पता नहीं होगा फिर वो चीज़ हम कर भी नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा चले अगर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली है तो मैं अकेले ना करूँ, जो लोग मेरे साथ आ सकते हैं एटलीस्ट वो शामिल हो जाएं। तो इनसे मैंने कहा तो इन्होंने लंबा प्रोग्राम खींच दिया। ये कहती हैं कि एक इस तरह की गैदरिंग करते हैं कि कोई पता नहीं कि अल्लाह ताला और भी लोगों के दिल में ये बात डाल दे और वो भी ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हों। तो अब ये इसीलिए इन्होंने आज बेसिकली किया है, बातों बातों में लगा के एंड पे क्लास का जिक्र कर रही हैं कि बंदे पकड़ लूँ अब जो पकड़ेंगी ये तो इन्हीं की हिम्मत है, अगर ना हुआ तो फिर मैं हर ईयर मैं ही बैठी होंगी।
देखिए इतने इल्ज़ाम लग गए हैं आप भरी महफिल में, आप सब आज़ाद हैं, सब खुशी से बैठ सकते हैं, खुशी से जा सकते हैं। इनकी इस बात पे मुझे वो एक वाक़या याद आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक शहर था यमामा, तो वहाँ का हाकिम था सुमामा उसका नाम था। बड़ी उसको इस्लाम से नफरत थी, चिढ़ थी उसको ना, किसी जंग में कैदी बन के मुसलमानों के हाथ में लग गया। जब वो मस्जिद नबी में आया तो नबी सल्लम ने साथियों से कहा कि देखो ये बड़ा आदमी है, ज़रा सरदार था तो तुम इसकी अच्छी इज्जत करो। उसको बड़ी इज्जत से रखा और जो भी डिटेल्स थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, उसको सलाम किया या जो भी ग्रीट किया होगा, तो नफ़रत की वजह से उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आपने कहा सुमामा सुनाओ क्या कहते हो, कहने लगा अगर तुम मुझे मार दो तो ज़ाहिर है मैं तुम्हारे काबू में हूँ, कर दो, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम बहुत अच्छे बंदे को छोड़ रहे हो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। यानी उखड़ी उखड़ी बातें की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रहा था गुस्से की या रौनत की वजह से। अल्लाह के नबी चले गए, फिर दूसरे दिन फिर आए, फिर यही सवाल था सुमामा सुनाओ क्या हाल है। दूसरा भी दिन गुजर गया, अब वो खामोशी से पूरा दिन सहाबा को, अल्लाह के नबी को, मस्जिद नबी की एक्टिविटीज़, जो भी आपका मामूल था वो देख रहा था। रोज़ आप उसको जाके ऑफ़र करते तो सुमामा यही कहता कि अगर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, मेरी कौम तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी। खैर किस्सा मुख्तसर, तीसरे दिन जब नबी सल्लम गए तो आपने अपने साथियों से कहा कि सुमामा को आज़ाद कर दो, जाने दो, जाओ सुमामा, हम तुम्हें नहीं। लेकिन दुश्मन को पकड़ा हो, कैदी हाथ आया हो तो उसको छोड़ देना ये छोटी बात नहीं होती। कोई मुल्क ऐसा नहीं करता, कोई हुकूमत ऐसा नहीं करती। अल्लाह के नबी ने उनको छोड़ दिया। वो निकले मस्जिद से, थोड़ी देर गुजरी तो वापस आए और उनको देखने से लग रहा था कि गुसल करके आए हैं, जिस्म से पानी के कतरे थे। आपके पास आए और कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहा क्या हुआ सुमामा, मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया। कहा आपने छोड़ के मुझे पकड़ लिया, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैंने 3 दिन में आपका जो अख्लाक देखा है और जो आपके साथियों के मामूलात देखे हैं तो इस्लाम के बारे में सारी नेगेटिविटी मेरे दिल से निकल गई है। और फिर वो इतना ज़बरदस्त मुसलमान हुआ। अल्लाह के नबी से कहा कि आप, मैं मक्का वालों को एक दाना भी नहीं दूंगा गंदम का, क्योंकि सारा अनाज वहीं से आता था। आते ही इसने ऐलान कर दिया मक्का वालों को एक दाना नहीं मिलेगा। जब वहाँ गंदम नहीं गई, क्रॉप्स नहीं गई, तो वहाँ फाके शुरू हो गए। अखीर फिर मक्का वाले नबी सल्लम के पास आए, सिफारिश करवाई कि आप सुमामा से कहें कि हमारा अनाज बंद ना करे, और आपने फिर उनके लिए फरमाइश की और फिर उसने दोबारा दिया। बात क्या है, दिल बदलते 1 मिनट लगता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। आज आप देखिए कि आप बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि किस सोच के साथ आए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा एक वक्त निकल आता है, मुझे तो आप हफ्ते में 4 दिन भी कह देंगे मैं कहीं ना कहीं से वक्त निकाल लूँगी, लेकिन ये आप डिसाइड करेंगे। ये जो मैंने प्लान दिया, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें आए, कोई और भी आ सकता है, लेकिन मैं चूँकि अवेलेबल हूँ तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि अभी वक्त मुनासिब नहीं है, ज़रा सा और बेहतर वक्त आ जाए, मौसम अच्छा हो जाए, तो फिर वक्त का इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल, यानी आज देखिए इस प्रोग्राम का कोई फ्लायर नहीं बना, आज की कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, लेकिन आप देख लें एक आधी कुर्सी खाली होगी। अगर अनाउंस कर दिया तो मुझे लगता है इस कमरे में हॉल इसमें नहीं आएंगे लोग पूरे। और ये जो इस्माल हुसना मेरे प्लान जहन में जो चीज़ है आपसे शेयर करने की, कि हम इंशाल्लाह इसको एक शॉर्ट कोर्स पे लेंगे, तकरीबन 10 क्लासेस होंगी जो नेक्स्ट वीक से बकायदा शुरू करेंगे। आज आपके हाथों में मुझे कोई कापी पेन नहीं दिखा, सेल फ़ोन है, इस पे नोट्स ले लेंगे तो और बात है, लेकिन यह कि कम अज़ कम एक कागज़ कलम पास हो जिसमें चंद बातें नोट की जाएँ। अगर आप चाहते हैं, कौन कितने लोग सोचते हैं कि करना चाहिए, आप लोगों में से, वैसे आप कहेंगे नहीं करना चाहिए तो इसका ये नहीं मतलब कि नहीं करेंगे, हम फिर और लोगों को बताएंगे कि वो आ जाएं। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो ये कोर्स करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इसका अंदर बाहर वालों को ना बताएं, है ठीक है। ये टाइम, ये दिन थर्सडे का ठीक है सबको? नहीं, 2 दिन कर देंगे हफ्ते में जी, ये इनका ख्याल है कि वंस अ वीक करना। कितने लोग हैं जो कहते हैं हफ्ते में एक दिन ठीक है, वो हैंड रेस करें, ज़रा सा हाथ थोड़ा ऊंचा करें। आप सियासत दानों वाला हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा जी। और ये जो टाइम है, देखिए आपने देखा है अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, हमने इसको एग्जैक्टली 7, हम यहाँ तो पहले से ही थे, साथियों ने कुछ और भी थोड़ा सा स्टेप कर लिया, लेकिन 7 to 8 टाइम सबके लिए सूटेबल है। अगले वक्त मेरे हाल एक आध वीक में तो मगरिब भी थोड़ी और पीछे चली जाएगी ना, मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को, घर वालों को सर्व करके वापस आएँ, और फिर इतनी भी देर ना हो कि आप अगले दिन के काम से मुश्किल में पड़ जाएं, ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम लोग यहाँ सारे मिलते हैं। देखिए 7 o'clock क्लास कब शुरू हो सकेगी, अगर आप लोग यहाँ तकरीबन 6:30 पे आएँ। आपने देखा जहाँ आपने गाड़ियाँ पार्क की हैं, वहाँ से इस हॉल तक आने में भी 15 मिनट तो लगे होंगे ना, और मुझे पता है आज फर्स्ट डे है, आपको थोड़ी पार्किंग के इशू होंगे, और ये जो आज नीचे बहुत सारी गैदरिंग हो रही है ना, आमतौर पे नहीं होती, और मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट थर्सडे नहीं होगी ना, आज के नीचे स्पेशल बच्चों का कोर्स हो रहा है, अदरवाइज़ ये पूरा पार्किंग लॉट खाली होता है। यहाँ इस स्कूल में हफ्ते में 2 दिन और भी क्लास होती है, तो आप लोग इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें। सिर्फ करें क्या कि आप लोग अपना नाम और फ़ोन नंबर, ताकि आपको एक हल्की सी लाइबिलिटी, इस फीलिंग का एहसास हो कि आपने अपने आप को रजिस्टर किया है। इसकी कोई कीमत नहीं है, मैं कहती हूँ इसकी कीमत अगर रखें तो फिर तो हम सब बैंक्रप्ट हो जाएंगे। इस इल्म की, अल्लाह के बारे में जानने की कोई कीमत नहीं है। आपकी अपनी खुशी है, आप अपनी इस क्लास को एक हिस्सा समझते हैं, ये चीज़ें मेरे यहाँ बताने की नहीं, लेकिन हो सकता है आप बाहर वालों से बाद में पूछें इसकी कोई फीस है नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और आप फिर बड़े स्माइली फेस के साथ मुस्कुराते हुए चाहिए। और ये मैं आपको बता दूँ, सिर्फ ये 10 क्लासें भी अगर हमने कर ली ना, तो वो सुमामा वाली कहानी हो सकती है हमारे साथ भी, ठीक है। तो आप लोग अपना नाम, फुल नेम, लास्ट नेम के साथ और दे, ताकि थोड़ा सा इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम नेक्स्ट वीक पेश करें, ताकि अगर आप लोगों ने ये पूरा कोर्स हमारे साथ कर लिया तो इंशाल्लाह आपको एंड पे इसका सर्टिफिकेट देंगे। लेना चाहते हैं? फ्राइडे को बहुत सारी और चीज़ें होती हैं शहर में ना जी। देखिए फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, पार्टियाँ, शादियाँ, दावतें, फिर आप लोग भी सारे हफ्ते के थके होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वीक डेज है ना, ये कॉमन डेज होते हैं हम सबके लिए। हम वर्किंग मोड में होते हैं, चलो सुबह भी करते हैं, इधर एक घंटा और कर लेंगे, लेकिन वीकेंड की बजाय मुझे लगता है ये बेटर है। और आप इसको ट्रायल तक करिए, प्रोवे। मेरी अच्छी हो गई है ना नौशा, ये बड़ी खुश होती है मुझे देख के। एक मुझे मोटी सी किताब ला दी इन्होंने, एक मेरे सर के लिए जी नोट सीखे, तो मैंने कहा टीचर किधर है हमारा, अगर ये टीचर के बगैर पढ़ी जाती तो फिर तो सारे काम आसान होते। लेकिन बहरहाल यह है कि कोशिश करके देखें, आप लोग अपनी दोस्तों को भी बताएं। इवन अगर आप में से और बहुत सारे लोग आएंगे तो मुझे यकीन है हम स्कूल वालों से इससे बड़ा हल भी ले सकते हैं आज। यानी ये मत सोचिए कि जगह नहीं, हाँ ये ज़रूरी है कि ज़ाहिर है आप असाइंड सीट होगी ना, अगर आप सारे आ रहे हैं तो फिर वाकई हम और लोगों तक बात नहीं करेंगे। ये जो आपसे नाम और एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं उसका भी यही मकसद है कि हमें पता हो कि आप नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। तो आज जो आए वो ना लिखें, लेकिन जो नेक्स्ट वीक आएंगे वो अपने नाम बाय सिस्टर फैज़ा रख बैठी हैं, आप उनका अपना नेम और फ़ोन नंबर दें। फिर हम करेंगे क्या कि आपका ग्रुप बना के जो क्लास से रेलेवेंट चीज़ें, आज हम बहुत सारा नहीं कर सके, आज डे वन था, और इंशाल्लाह वक्त के साथ ये सारी चीज़ें बेटर होंगी, तो फिर हम आपको उस ग्रुप में इस रेलेवेंट जो स्टडी मटीरियल और बाकी चीज़ें होंगी, देखते हैं इन 10 क्लासों में क्या होता है। उसके बाद फिर जो माशाल्लाह नादिया जी की ख्वाहिश थी कि हम कुरान की तफसीर शुरू करें, क्या करें, वो बात की बातें हैं। अभी सिर्फ हमने अपने रब की बातें करनी है, ठीक है, मुतमईन है इस पे इंशाअल्लाह ताला। तो जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन इसकी बेहतरीन तरीके से इसको करने की तौफीक दे, और ये जगह, ये वक्त, जो भी रिसोर्सेज इसमें यूज़ हो रहे हैं, इसको हमारे और सब साथियों के हक़ में बेहतरीन सदका जारिया बनाए। सुब्हानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही वअस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, इखलास अता फरमा, रियाकारी और दिखावे से बचा। या अल्लाह तेरी नेमतों के मुकाबले में तो ये बिल्कुल एक आटे में नमक है, लेकिन या अल्लाह तो हमारे इस थोड़े से वक्त को कबूल कर ले। और या अल्लाह इस थोड़े से वक्त में जो बरकत हो उसका असर हम अपनी बाकी चीज़ों पर भी देखें। और या अल्लाह तेरे बारे में जानना, तेरे नामों को देखना, तेरी सिफात पर गौर करना, या अल्लाह हमें इस काबिल करते कि हम इस चीज़ को ले सकें, हमें महरूम लोगों में ना करना। सुब्हानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।